श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 14वीं पुस्तक जो पंचम वर्गणाखंड, उसमें अभी हम बंधनीय अनुयोग द्वार चल रहा है अपना। ये सबको बंधन अनुयोग द्वार शुरू में लिखा था, परंतु अभी उसमें से अभी बंधनीय की बात चल रही है अपने। पृष्ठ है संख्या 67 67। यहाँ हम 23 वर्गणा देख रहे हैं। उसमें से हमने देखा था कि शुरू से देखा ना, एक सिंगल परमाणु, एक प्रदेशी, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, इस तरह से उसको कहा था। एक प्रदेशी, उसके बाद संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी के बाद आहार वर्गणा, उसके बाद अग्रहण, अग्रहण वर्गणा, फिर उसके पश्चात तेजस वर्गणा, फिर अग्रहण वर्गणा, फिर भाषा वर्गणा, फिर अग्रहण वर्गणा, फिर मनोवर्गणा, अग्रहण वर्गणा और कर्माण वर्गणा, उसके बाद ध्रुवस्कंध, ध्रुवस्कंध के बाद सांतर निरंतर वर्गणा देखे थे, और उसके बाद ध्रुव शून्य, ध्रुव शून्य के बाद प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा, उसकी बात अपनी चल रही थी। अभी चल रही है वो, क्योंकि जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा किसको कहते, उसकी बात अपनी चल रही थी। तो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा कहना किसको, याद है मैंने? हाँ, देखो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ देखना, अश्विन भाई ने बताया वो बराबर है। जहाँ निगोद नहीं पाए जाते हैं, जिन जीवों के शरीरों में निगोद नहीं पाए जाते, ऐसे शरीरों में, तो उसमें कौन सा हो सकता है? औदारिक, कौन से औदारिक? केवली के, हाँ, तो वहाँ औदारिक है और फिर तेजस है, कार्मण है, उनका जो स्कंद होगा उसको प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का है। अब केवली के शरीर में निगोद नहीं है, और कहाँ निगोद नहीं होते हैं? हाँ, देव यानी देव नारकियों के वैकरिक शरीर में नहीं है, तो उसको भी प्रत्येक शरीर वर्गणा कहेंगे। आहारक शरीर में भी नहीं है, जल वायु अग्नि और पृथ्वी, इनमें भी नहीं है, और जो प्रत्येक वनस्पति है अप्रतिष्ठित, उसमें भी नहीं है। तो इनके जो ये जीवों के जो शरीर है, वहाँ हम कहेंगे ये जो प्रत्येक शरीर वर्गणा पाई जाती है, ख्याल में ना? देखो 65 नंबर के पेज पर नीचे वहाँ क्या लिखा है, एक एक जीव के एक एक शरीर में उपचित हुए कर्म और नौकर्म स्कंदों की प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा संज्ञा है। और फिर वहां पूछा वो जघन्य किसके होती है, उत्कृष्ट किसके होती है। या बराबर है, परंतु वहां निगोद नहीं होता, ये बात उसमें नहीं लिखी है। जो 66 पेज निकालना, पहले पैराग्राफ के अंत समय, अंतिम दो लाइन पहले पैराग्राफ के, इस प्रकार आकर जो अयोगी केवली के अंतिम समय में स्थित है उसके सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है, क्योंकि इसके शरीर में निगोद जीवों का अभाव है। यानी हाँ, किसकी होती है वो बता रहे हैं, क्योंकि अयोगी की होती है, क्योंकि उनका तो निकल गया बहुत सारा, इसलिए अयोगी को ले। तो अकेले अभी जघन्य किसको होती है वो छोड़ दो, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा किस किस के हो सकती है, देव है, नारकी है, केवली है, और जो आहारक शरीर है, और ये चार जो एक केंद्रीय है, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, ये जो सारे, इनको प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा है। अब जब आगे की बादर निगो द्रव्य वर्गणा, तब जो रिमेनिंग जो बादर युक्त वाले हैं उसकी बात वहां आएगी। हाँ ना, फिर भी उसमें जघन्य, क्योंकि कितने भी उसकी निर्जरा हुई तो भी वहां पर अंतिम समय में बहुत सारे है ना, वहां पर फिर भी जितने हैं उसमें से जघन्य है। ये इसमें प्रस्तावना में इसके बारे में भी लिखा है। हाँ, निगोद वाले हैं। हाँ है, फिर भी उसको अन्य नाम है ना, बादर निगोद वर्गणा कहेंगे उसको, निगोद का अपना है, परंतु यहाँ उस जीव के साथ वो एक स्कंद रूप से है कि नहीं। वहां पर अभी हम अपना ये प्रत्येक शरीर है, परंतु इसी शरीर के आधार से निगोद रहते हैं, बादर निगोद, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रतिष्ठित प्रत्येक कहेंगे, तो ये बादर निगोद वर्गणा कहलाएगी हमारी, वो प्रत्येक शरीर वर्गणा नहीं कहलाएगी। तो अपने शरीर में तो त्रस जीव भी रहते हैं कि नहीं रहते, फिर हाँ कृमि वगैरह है, केवली के शरीर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, अपने वो बादर निगोद निकल गए तो कृमि रहने में क्या हर्जा है, त्रस जीव कहाँ निकल गए। देखो ये प्रस्तावना निकालना, अपने पढ़ा नहीं ना इसलिए, नहीं 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 देखो ये, हाँ ये बंधनीय वाला है ना, पृष्ठ संख्या में बताती हूँ एक मिनट में, 6 नंबर पृष्ठ, किसमें आप क्या बताना चाहते हैं। हाँ वो 6 पृष्ठ पर आना, अपना जो त्रस के संबंध में विषय चल रहा है ना, दूसरे पैराग्राफ में। हाँ देखो यहाँ वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते, इसका अपना उत्तर तो नेक्स्ट हाफ में आने वाला है, पर शुरू से पढ़ते। यहाँ 12वें गुणस्थान में उस गुणस्थान वाले जीव के शरीर के सब जीवों के, निगोद जीवों के मरने की बात कही गई है। इसका अभिप्राय यह है कि संयोग केवली और अयोग केवली जीव का शरीर एकमात्र अपने जीव को छोड़कर अन्य त्रसर स्थावर निगोद जीवों से रहित हो जाता है। त्रस स्थावर और निगोद जीव, अन्य जो कुछ है, आप कहेंगे त्रस और स्थावर निगोद होते के दो टाइप के, ऐसा नहीं लगाना, त्रस और स्थावर फिर कॉमन लगाना है, और फिर निगोद, उनके शरीर की 7 धातु और उपधातु, यहां तक कि रोम, नख, चमड़ी और रक्त भी एक संयोगी केवली जीव के शरीर को छोड़कर अन्य किसी जीव का आधार नहीं रहता। यानी उनके शरीर के आधार से अन्य कोई जीव नहीं है। यहां 12वें गुणस्थान में यद्यपि क्रम से निगोद राशि का अभाव बतलाया गया है, इसलिए यह प्रश्न हो सकता है, क्षीण कषाय जीव के शरीर से निगोद राशि का अभाव होता है तो हो, पर उसके शरीर से त्रस राशि का भी अभाव हो जाता है, यह कैसे माना जा सकता है। उत्तर यह है कि नारकी, देव, नारकी के बाद कॉमा लगाना, आहारक शरीरी और केवली, इन चार प्रकार के त्रस जीवों के शरीरों को छोड़कर अन्य जितने त्रस जीवों के शरीर हैं वे सब बादर निगोद प्रतिष्ठित होते हैं। क्या कहा? ये कृमि वगैरह जो है उनके शरीर है वो बादर निगोद से प्रतिष्ठित है कि नहीं? वर्म्स है तो वर्म्स के शरीर के आधार से बादर निगोद रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, ऐसा देखो, ऐसा आगम वचन है। अब जबकि केवली जिनके शरीर में एक भी निगोद जीव नहीं रहता तो वहां उनके आधारभूत अन्य कृमि रूप त्रस जीवों की संभावना ही नहीं की जा सकती, वहां कोई निगोद है ही नहीं है। तो यदि हम परम औदारिक शरीर के आधार से कृमि मानेंगे तो कृमि के आधार से निगोद है तो वो केवली के शरीर में भी निगोद मानना पड़ेगा। यही कारण है कि केवली जिनके शरीर को कृमि रूप, ये ऊपर कृमि हुआ था, मैंने पढ़ते समय कृमि पढ़ा था नीचे से तीसरे लाइन में। हाँ, वो क्र हुआ है, क्रू त्रस जीवों और बादर निगो जीवन से रहित बतलाया है। देखो ये तो मूल में से पूरा ही पढ़ने जैसा है। ये प्रत्येक शरीर वर्गना की जो बात है ना, उस किसको कहना कि जहां पर चार नंबर के पृष्ठ पर नीचे से तीसरे लाइन में क्या लिखते हैं, वहां देखो, एक जीव के एक शरीर में जो कर्म और नो कर्म स्कंद संचित होता है उसकी प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना संज्ञा है। यह प्रत्येक शरीर पृथ्वी कायिक जल कायिक अग्नि करो अपनी हुआ है, अग्नि कायिक वायु कायिक देव नारकी आहारक शरीरी प्रमत्त संयत और केवली जिनके पाया जाता है, इन आठ प्रकार के जीवों को छोड़कर शेष जितने संसारी जीव है उनका शरीर या तो निगोद जीवों से प्रतिष्ठित होने के कारण स्वप्रतिष्ठित रूप प्रत्येक है या स्वयं निगोद रूप है। मात्र जो प्रत्येक वनस्पति निगोद रहित होती है वह इसका अपवाद है। अब उसकी और चर्चा वहां की है वो तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो नीचे फिर पढ़ना है क्या पूरा? हाँ, क्योंकि किसी ने पढ़ा नहीं ना। हाँ चलो यहीं से पढ़ते, अपवाद है। यहां यह प्रश्न उठता है कि जब मनुष्यों के शरीर अन्य अवस्थाओं में निगोदों से प्रतिष्ठित होते हैं तब ऐसी अवस्था में आहारक शरीरी संयोगी और अयोगी केवली जीवों के शरीर निगोद रहित कैसे हो सकते हैं? उसका समाधान कि प्रमत्त संयत जीव के जो औदारिक शरीर होता है वह तो निगोदों से प्रतिष्ठित ही होता है, यानी मुनियों का जो शरीर है औदारिक शरीर वो तो सब प्रतिष्ठित है, उसके आधार से तो निगोद है। वहां जो आहारक शरीर उत्पन्न होता है वह अवश्य ही निगोद राशि से अप्रतिष्ठित होने के कारण केवल प्रत्येक रूप होता है, यानी मात्र प्रत्येक रूप होता है, सिर्फ प्रत्येक रूप होता है। इसी प्रकार जब यह जीव बारहवें गुणस्थान में पहुंचता है तो वहां उसके शरीर में जितनी निगोद राशि होती है उसका क्रम से अभाव हो जाता है और बारहवें गुणस्थान के अंतिम समय में निगोद राशि और कृमि चाहिए, क्रम हुए ना कृमि राशि, और कृमि राशि का पूरी तरह से अभाव होकर संयोगी केवली जीव का शरीर केवल प्रत्येक रूप हो जाता है, मात्र प्रत्येक रूप होता है। उसके बाद अयोगी केवली जीव के यही शरीर रहता है इसलिए यह भी प्रत्येक रूप होता है। ये जो मात्र प्रत्येक है उसी को प्रत्येक कहा और जो निगोद से आधारित है उसको तो बादर निगोद कह दिया, शरीर को भी बादर निगोद कह दिया, इसलिए उसको बादरनिगोद वर्गणा में ले लिया। और जो अकेला प्रत्येक है उसी को प्रत्येक शरीर कहा यहाँ पर, ये वर्गणा के प्रकरण में। इसलिए यह भी प्रत्येक रूप होता है, यह जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा। अब ये प्रत्येक शरीर वर्गणा में हमने देखा जघन्य किसके, उत्कृष्ट किसके हैं। तो जघन्य उसी के हो गए जिसके तो बहुत सारा निकल गया है, हाँ, तो वो अयोगी के अंतिम समय में होगा। तो अयोगी में भी जो आते हैं वो कोई गुणित कर्मांशिक रूप से आते, कोई क्षपित रूप से आते। तो क्षपित वाले को यहाँ लिया है जघन्य के प्रकरण में, इसलिए कहते ये जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा क्षपित कर्मांश विधि से आए हुए अयोगी केवली जिनके अंतिम समय में होती है। क्योंकि पूर्व कोटि की आयु वाला होगा तो यह औदारिक शरीर के कितने परमाणु उनके निकल गए वगैरह वगैरह उसमें सब बातें आएगी, तेजस वगैरह कारमान के भी कितने निर्जरा हो गए। और उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा किसके होगी, तो कहते महावन के दाहादि के समय, दाह ने वो तो अग्नि लगता है ना, एक बंधन बद्ध अग्निकायिक जीवों की होती है। वहां एक अग्निकायिक जीव नहीं है, वहां एक ही जीव की अपेक्षा नहीं लेनी है। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा पूरे ही एक स्कंद बन गया उनका, तो असंख्यात वो अग्निकायिक जीवों का मिलकर वो एक बंधन में बंधे हुए हैं, शरीर सबके जुड़े हुए हैं। इसलिए उसको ये देखो क्या कहते, उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा महावन के दाहादि के समय एक बंधन बद्ध अग्निकायिक जीवों की होती है। यहाँ यद्यपि महावन के दाह के समय जितने अग्निकायिक जीव होते हैं उनका अपना अपना शरीर अलग अलग ही होता है, पर वे सब जीव और उनके शरीर परस्पर संयुक्त रहते हैं, इसलिए उन सबकी एक वर्गणा मानी गई है। वो इकट्ठे एक जगह रहते हैं इसलिए उसकी एक वर्गणा कही है। अब यहाँ दूसरा एक प्रश्न उठाया है, यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि विग्रह गति में स्थित जो बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद जीव होते हैं उन्हें प्रत्येक शरीर मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये शरीर बराबर करना, पूरी वेलांटी नहीं दिख रही है, क्या कहना चाहते हैं, बादर निगोद हो या सूक्ष्म निगोद, विग्रह गति में उनके शरीर है कि नहीं है, नहीं है। तो वहां उनको मान लो कि प्रत्येक शरीर मानो, उसमें क्या होता है, क्योंकि वहां तेजस कारमान है केवल ना, तो उसमें तो है नहीं, वो शरीर है नहीं उनका। अनंत जीव कहाँ है, वो इकट्ठे वो अलग अलग गति से आ रहे हैं ना, इकट्ठे विग्रह गति में है, क्योंकि वहां उन जीवों का एक शरीर न होने से वे सब अलग अलग ही माने जाने चाहिए। ये प्रश्न उठाया है, इस शंका का समाधान यह है, वहां भी उनके साधारण नाम कर्म का उदय रहता है, इसलिए वे अनंत होते हुए भी एक बंधन बद्ध ही होते हैं। यानी साधारण नौकर्म नाम कर्म का ऐसा लेना चाहते होगे शायद, साधारण शरीर नाम कर्म का ऐसा लेना चाहिए उनके, साधारण नाम कर्म करेंगे हम। और इसलिए वे अनंत होते हुए भी एक बंधन बद्ध ही होते हैं, अतः उन्हें प्रत्येक शरीर नहीं माना जा सकता। यह कहना कि विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय देखा जाता है, इसलिए जिनके इन कर्मों का उदय होता है उन्हें निगोद जीव मानने में कोई बाधा नहीं आती, तथा इनके अतिरिक्त जो जीव होते हैं चाहे उन्होंने शरीर ग्रहण किया हो चाहे शरीर ग्रहण न किया हो वे सब प्रत्येक जीव कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक शरीर वर्गणा किन किन जीवों के किस प्रकार होती है इसका विचार किया। विग्रह गति में भी उनके साधारण नाम कर्म का उदय है इसलिए उनको प्रत्येक शरीर ही नहीं माना है, इतनी बात यहाँ बताते हैं। ये अपना विषय इतना ही है, जब वो बादर निगोद वर्गणा की बात आएगी तब उसमें फिर पढ़ेंगे, याद करेंगे ना उसको, क्योंकि क्या है ये पढ़ लेना जब कहते हैं तो नहीं होता है ना पढ़ने को, अपने घर में नहीं होता है, यहाँ पढ़ा जाता है और ये विषय से लगता है, इसलिए भी यहाँ उसकी बात हमने देखी। ये प्रत्येक शरीर वर्गणा ख्याल में है ना, जहाँ अकेला प्रत्येक शरीर है उसी को ये प्रत्येक शरीर वर्गणा ली, तो उसमें जो कुछ यथा योग्य औदारिक या वैक्रियक है, तेजस कारमाण है, उनका जो एक स्कंद है उसको प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा है। वो किस किस के होती है वो हमने देखी अभी, और वो मिनिमम जघन्य किसको होती है, तो क्षपित कर्मांशिक रूप से आए हुए अयोगी केवली के अंतिम समय में होती है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, पुनः अभी ये तो प्रत्येक शरीर वर्गणा किसके होती है वो देखी हमने, जघन्य किसको होती वो भी देखी, अब उसमें जो अलग अलग विकल्प है उसको देख रहे हैं। ये हमने 66 पेज से देखना शुरू किया था, देखो नीचे का पैराग्राफ वहां पढ़ेंगे जरा। फिर अब इस वर्गणा के महात्म्य का ज्ञान कराने के लिए स्थान प्ररूपणा करते हैं, अलग अलग स्थान। जघन्य हमने देखा, उत्कृष्ट तो अभी हमने इसमें पढ़ा प्रस्तावना में, यहाँ तो अभी वो बात आएगी, पर यहाँ स्थान यानी एक परमाणु अधिक वाला, दो परमाणु अधिक वाला, ये अलग अलग स्थान किस तरह से हो सकते हैं उसकी बात यहाँ से उठा रहे हैं। देखो यथा औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर के परमाणुओं के तीन पुंज ऊपर स्थापित करके, अभी एक एक परमाणु किस तरह से बढ़ सकता है उसकी बात बता रहे हैं, और उनके पहले ही विसरसोपचयों के पुंज स्थापित करके, यानी तीन तो ये औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर वाले, मिनिमम जघन्य वाला शुरू किया ना, जघन्य स्थान किसके होता है, अयोगी के अंतिम समय में, वो भी क्षपित कर्मांशिक से आए हुए। अब उनके तीन पुंज तो ये किए, औदारिक का एक पुंज, तेजस का एक, कार्मण का है, और उनके तीनों के अपने अपने जो विसरसोपचय है, तो एक एक परमाणु के साथ वो अनंत अनंत तो विसरसोपचय होते हैं, तो वो विसरसोपचय का एक एक पुंज अलग अलग किया, ऐसे छह पुंज हुए। फिर इन जघन्य छह पुंजों के ऊपर, ये जघन्य है ना क्योंकि अभी आयोग के विलय को जघन्य बताया, अभी क्षपित कर्मांशिक से आए हुए, इसके ऊपर परमाणुओं के बढ़ाने की विधि कहते हैं, उसमें एक एक परमाणु बढ़ाकर दिखाएंगे, किसी जीव को वो अधिक वाले परमाणु हो गए तो कैसे हो सकते हैं। क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर जो अंतिम समयवर्ती भव्य हुआ है यानी अयोगी हुआ है, उसके औदारिक शरीर के विसरसोपचय पुंज में एक विसरसोपचय परमाणु के बढ़ने पर वह अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। जघन्य से एक परमाणु वाला अधिक स्थान किस में होगा, एक विसरसोपचय में एक परमाणु बढ़ाया है, क्यों औदारिक में बढ़ाते हैं तो क्या होता, तो एक के साथ तो अनंत विसरसोपचय आ जाते हैं, हमको एक ही परमाणु अधिक वाला स्थान चाहिए, तो विसरसोपचय में एक परमाणु बढ़ाया, पुनः उसी में दो परमाणुओं के बढ़ने पर तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है, तीन परमाणुओं के बढ़ने पर चौथा अनुपुनरुक्त स्थान होता है, चार विसरसोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर पांचवा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार औदारिक शरीर के विसरसोपचय पुंज में कितने विसरसोपचय, एक एक परमाणु के साथ कितने लगे रहते हैं, सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक, विकल्प कितने हो गए उसके, अभी ये तो औदारिक का विसरसोपचय में, अभी औदारिक भी बढ़ाएंगे, उत्तरोत्तर एक एक परमाणु की वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार वृद्धि करने पर औदारिक शरीर के विसरसोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे अपुनरुक्त स्थान उपलब्ध होते हैं। यह स्थान प्ररूपणा संभव सत्य की अपेक्षा की है। कितने स्थान उत्पन्न हुए अभी तक, कितने अनंत, सब जीवों से अनंत गुणे, तो क्या अभी तक जीव कितने सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धों की राशि जीव तीनों काल के भी सिद्ध ले लेंगे, तो भी जीव राशि के अनंत विभागी होते हैं। और यहाँ विकल्प कितने बताए, खाली विसरसोपचय में। अभी औदारिक के एक 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 औदारिक के साथ इतने विसरसोपचय हैं, तो ये इतने अनंत विकल्प अभी तक हो चुके होंगे कि नहीं हो चुके होंगे? अभी इतने सिद्ध भी नहीं हुए तो इतने विकल्प कहां से होते? कल जो बात आई ना, ये संभावना सत्य है, यानी पॉसिबिलिटी है ना। इतने विसरस ऑब्जेक्ट, फिर एक एक औदारिक परमाणु बढ़ाएंगे, फिर उसके साथ एक एक परमाणु के साथ इतने इतने अनंत विकल्प हो गए। अभी तो तेजस और कारमान की बात तो बाद में उठाएंगे, है ना। तो देखो, क्योंकि एक परमाणु के साथ विसरस ऑब्जेक्ट सिद्ध जीव राशि से अनंत गुणे, सेकंड लाइन में लिखा था। देखो, एक एक परमाणु की वृद्धि के, तो इस पैराग्राफ में चौथी लाइन में लिखा है, यह स्थान प्ररूपणा संभव सत्य की अपेक्षा की है। शंका, संभव सत्य किसे कहते हैं? इसको हमने कल पढ़ा था, परंतु अभी ज्यादा ख्याल में आता है ना, क्योंकि एक विसरसोपचय एक परमाणु के साथ कितने हैं, तो जीव राशि से अनंत गुणे। और अब तक सिद्ध कितने हुए, जीव राशि के अनंत विभाग। तो इतने स्थानों की तो संभावना होती है, इतने तो हुए ही नहीं है। समाधान, इंद्र मेरु को पलटने में समर्थ है, इसे संभव कहते हैं। संभव यानी संभावना, पॉसिबिलिटी। शंका, व्यक्त रूप से इतने स्थानों के उत्पन्न होने पर क्या दोष उत्पन्न होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर सब जीवों से सिद्ध अनंत गुणे प्राप्त होते हैं। क्योंकि इतने विकल्प देखे ना, कितने, एक औदारिक शरीर परमाणु के साथ विसरसोपचय अनंत है, कितने अनंत, जीव राशि से अनंत गुणे। अब इतनी सारी पॉसिबिलिटी हम अयोगी के अंतिम समय में मान लेते हैं, तो सिद्धों को कितना होना चाहिए, जीव राशि से अनंत गुणे। अब वो कहां से हो गए सिद्ध, जो जीव ही सिद्ध होने वाले और ये भी, अब ये तो हम ये क्षपित कर्मांशिक से आए हुए की बात चल रही है। परंतु यहां जितने स्थान उत्पन्न किए गए हैं उतने सिद्ध है नहीं, क्योंकि सिद्ध अतीत काल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इसलिए उन्हें उक्त स्थान प्रमाण मानने में विरोध आता है। ये कहां से कह दिया कि अतीत काल के असंख्यातवे भाग में है? हाँ, 6 महीने और 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं। हाँ हाँ, ये कैसे हो गया असंख्यात, कैसा घटित किया? हाँ बराबर है, 6 महीने में 608 होते हैं ना, तो 6 महीने और 8 समय लेंगे तो उसमें तो असंख्यात समय बीत गए हैं, तो इसलिए वो उसका असंख्यात अभाग घटित किया उन्होंने। मान लेते कि 6 महीने में हुए ही नहीं है और 8 समय में ही सब हुए, ऐसा भी हम देखते हैं ना, 608 संख्या 8 समय में घटित होती है, तो 6 महीने 8 समय का ये 8 समय कितवा भाग हो गया, असंख्यातवा भाग। तो जितना काल बीत गया है उसके असंख्यातवे भाग ही सिद्ध हो चुके हैं। काल अनंत गया है, सिद्ध भी अनंत हो चुके हैं, परंतु वो काल के असंख्यातवे भाग ऐसा कहते हैं। अब आगे नीचे का पैराग्राफ, पुनः क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर सबसे जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा के ऊपर विसरसोपचय सहित एक परमाणु से औदारिक शरीर को अधिक करके अन्य एक जीव के स्थित होने पर यह भी अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि उत्तरोत्तर एक परमाणु के क्रम से पहले बढ़ाए हुए औदारिक शरीर विसरसोपचय पुंज के साथ इस समय औदारिक शरीर का एक परमाणु अधिक देखा जाता है। अभी हमने पहले विसरसोपचयों को बढ़ाया, अब औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ गया। पूर्वोक्त औदारिक शरीर के सबसे जघन्य परमाणु पुंज की अपेक्षा सांप्रतिक औदारिक शरीर परमाणु पुंज एक परमाणु अधिक है। पुनः पूर्वोक्त क्षपक को छोड़कर और सांप्रतिक क्षपक को ग्रहण कर, यानी वो पहले वाला क्षपक अभी उसको बाजू हटा, अभी नया क्षपक लिया, इसके औदारिक शरीर विश्वसोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक आदि के क्रम से, पहले वाला लिया ना तो एक सिंगल परमाणु में उसमें विश्वसोपचय बढ़ाए थे, अभी कोई अन्य औदारिक परमाणु उसके पास ज़्यादा है और फिर उसमें एक एक विश्वसोपचय बढ़ा, तो उसमें भी जीव राशि से अनंत गुणे इतने विकल्प हो गए। तो कहते आदि के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर सब जीवों से अनंत गुणे ही अपुनरुक्त स्थान उपलब्ध होते हैं। पुनः क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर सबसे जघन्य औदारिक शरीर पुंज को दो परमाणु अधिक करके तथा उसी के विश्वसोपचय पुंज को भी विश्वसोपचय पुंज की अपेक्षा दो परमाणु अधिक करके अन्य जीव के स्थित होने पर अनंतर पिछले स्थान से, पहले जो देखा था उस स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। एक एक परमाणु किस तरह से बढ़ा सकते उसकी बात कर रहे हैं। सांप्रतिक यानी वर्तमान, जिसकी हम बात कर रहे हैं, विवक्षित अभी का सांप्रतिक स्थान है, अभी हम जिस स्थान की चर्चा कर रहे हैं। कारण पहले के समान जानकर कहना चाहिए। अब इस समय उत्पन्न हुए स्थान के औदारिक शरीर विश्वसोपचय पुंज में एक परमाणु पुद्गल के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार दो तीन से लेकर सब जीवों से अनंत गुणे औदारिक विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ने पर अनंत अपुनरुक्त स्थान उपलब्ध होते हैं। एक एक औदारिक शरीर का परमाणु बढ़ता है, उसके साथ अनंत अनंत स्थान हो रहे हैं। अनंतर क्षपित कर्मांशिक रूप से प्राप्त सबसे जघन्य औदारिक शरीर पुंज को तीन परमाणु अधिक करके तथा सबसे जघन्य विश्वसोपचय पुंज में विश्वसोपचय के तीन परमाणु अधिक करके स्थित हुए अन्य जीव के अनंतर पिछले स्थान से एक बार वृद्धि होकर प्राप्त हुआ सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक है, होता है। ये स्थान कितने कितने हो सकते हैं उसकी बात चल रही है। इस प्रकार इस विधि से अपने अपने तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट द्रव्य के प्रमाण के प्राप्त होने तक, तत्प्रायोग्य ने यथा योग्य यहाँ जो पॉसिबल है उसको कहा तत्प्रायोग्य, औदारिक शरीर के दो पुंज बढ़ाने चाहिए। कौन से दो पुंज? एक औदारिक शरीर का पुंज और उसके विश्वसोपचय का पुंज। इतनी विशेषता है कि इन सब स्थानों में तेजस और कार्मन शरीर सबसे जघन्य रहते हैं, क्योंकि हमको एक एक से बढ़ाना है ना, तो उनको उतना ही रखा और इसी को बढ़ाया। शंका, इन चारों की वृद्धि हुए बिना, यानी कौन से चार? तेजस और कार्मान शरीर तथा उनके भी विश्वसोपचय, इनकी वृद्धि हुए बिना अपने विश्वसोपचय सहित औदारिक शरीर की ही वृद्धि कैसे होती है? यानी वो औदारिक शरीर अकेले की वृद्धि क्यों कही? उसके साथ साथ तेजस कार्मान की भी वृद्धि होनी चाहिए थी, उसके बिना इसकी अकेले की वृद्धि कैसे हो सकती है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि इन चारों के जघन्य रहते हुए उनकी अविरोधी उत्कृष्ट वृद्धि ही यहाँ ग्रहण की है। क्या कहते हैं? वो बढ़े बिना जितना पॉसिबल है बढ़ने को उतना लिया है। सब साथ में बढ़ते तो उसकी बात नहीं है, साथ में वो तेजस कारमान बढ़े बिना अकेले औदारिक में जहाँ वृद्धि पॉसिबल है उसी को यहाँ ग्रहण किया है। इसलिए अविरोधी कहा, अविरोधी उत्कृष्ट वृद्धि। पुनः अन्य क्षपित कर्मांशिक जीव के विश्वसोपचय सहित औदारिक शरीर को उत्कृष्ट करके अनंतर तेजस शरीर के सबसे जघन्य विश्वसोपचय पुंज में एक परमाणु पुद्गल के बढ़ाने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पहले में पहले औदारिक में घटाया जघन्य से उत्कृष्ट तक, पहले हर बार विश्वसोपचय में बढ़ाएंगे, फिर औदारिक का परमाणु बढ़ाएंगे, फिर विश्वसोपचय में, फिर औदारिक का, एक इस तरह औदारिक के अविरोधी उत्कृष्ट तक ले गए। अब उसके बाद इतने स्थान होने के बाद तेजस में आए, तेजस में भी एक एक विश्वसोपचय पहले बढ़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अयोगी में पॉसिबल उत्कृष्ट तक, वो वाला उत्कृष्ट नहीं लेना है। क्षपित कर्मांशिक रूप से आए हुए अयोगी का उत्कृष्ट ऐसा लेना, और वो भी उत्कृष्ट कैसे, अभी अन्य कोई जीव होगा उसका उत्कृष्ट अलग हो सकता है, परंतु तेजस कारमान बढ़े बिना जिसके उत्कृष्ट हो सकता है, और ये भी पूर्व कोटि वाला लिया इस तरह से, और उसके अंतिम समय में अभी जो निकल गया है और जो बचा है उसी में इसे ग्रहण करना है। अनंतर तीसरी लाइन पैराग्राफ की, अन्य जीव के द्वारा तेजस शरीर के विसरसोपचय पुंज में दो परमाणु अधिक करने पर अन्य अपुनरुक्त करना स्थान होता है। यहां पर विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट है, कहा ना, क्योंकि हम तो ये तो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, औदारिक शरीर का तो उत्कृष्ट हो गया है, और हमने अभी तेजस में विसरसोपचय में एक परमाणु बढ़ाया है। तेजस शरीर परमाणु पुंज जघन्य है, और विसरसोपचय सहित कार्मण शरीर भी यहाँ पर जघन्य है। हाँ, उस जीव की अपेक्षा से मिनिमम है, परंतु अन्य अन्य जीव या अन्य अन्य की बात, उसकी बात औदारिक का उत्कृष्ट लिया है, अविरोधी उत्कृष्ट का है ना। हाँ, क्योंकि हमको एक एक परमाणु से बढ़ते हुए स्थान को दिखाना है, इसलिए पॉसिबिलिटीज अलग अलग जीवों में कोई भी अलग अलग हो सकती है। एक परमाणु किस तरह से बढ़ेगे, पहले हमने औदारिक में बढ़ाए, तब तक तेजस कारमान को मिनिमम रखा था जघन्य, अब औदारिक तो उत्कृष्ट तक आ गए, अब तेजस का जो जघन्य है उसमें पहले विसरसोपचय बढ़ा रहे हैं, कारमान को अभी जघन्य ही रखा है। क्षपित कर्मांशिक के अयोगी के अंतिम समय की ही बात चल रही है, अलग अलग जीवों में कैसी अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी बात बता रहे हैं। देखो, हाँ, विसरसोपचय से कार्मण शरीर भी यहां पर जघन्य है, वो नीचे का बड़ा पैराग्राफ। पुनः अन्य जीव के तेजस शरीर के विसरसोपचय परमाणु पुंज को तीन परमाणु अधिक करके स्थित होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार परमाणु अधिक आदि के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे विसरसोपचय रूप परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर अनंतर जिसने विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर को ओह उत्कृष्ट किया है और विसरसोपचय सहित कार्मण शरीर को जघन्य किया है तथा तेजस शरीर को एक परमाणु अधिक करके वो उसी के विसरसोपचय पुंज को विसरसोपचय के एक परमाणु से अधिक करके जो क्षपित कर्मांशिक अन्य जीव स्थित है उसके अनंतर स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। क्या कहा, पूरा विसरसोपचय पुंज अलग रखा था, उसमें से वो बढ़ोतरी करते गए थे, अब विसरसोपचय पुंज तो उतना ही रहा और तेजस में एक बढ़ाया, क्योंकि वो पुंज हमने अलग स्थापित किया था ना, क्योंकि एक बंधन रूप से वहां है कि नहीं वो इतना देखना है, वो कौन से परमाणु के साथ चिपका हुआ है, परंतु वो सब आपस में है, तो विसरसोपचय का पूरा ही पुंज लेना है वहां पर। अब अन्य कोई जीव ऐसा लिया कि वो जीवन से अनंत गुणे विसरसोपचय हो गए, अब तेजस का एक बढ़ाना, उसके बाद विसरसोपचय में एक एक बढ़ाते रहना, बाकी औदारिक तो उत्कृष्ट तक आ ही गया है और कारमान को अभी जघन्य तक रखा है, उसके परमाणुओं के बाद में बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको एक एक परमाणु से बढ़ते हुए कौन कौन से स्थान हो सकते हैं, अभी संभव सत्य की बात बताई ना, संभावना उसकी बात यहां कर रहे हैं। वो सब इकट्ठे ही ले उन्होंने, देखो यहाँ क्या लिया, एक एक परमाणु बढ़ाना और फिर उसमें विश्रस उपचय सभी लेना। खाली एक परमाणु बढ़ाया, एक परमाणु के साथ सभी विश्रस उपचय अनंत होते हैं, होते ही है, परंतु उसमें क्या लिया, उन्होंने एक अवतारिक परमाणु बढ़ाया। अनंत एक साथ बढ़ते तो फिर बीच में एकदम अनंत की वृद्धि होती, वैसा नहीं लिया यहाँ पर। नहीं तो वैसा भी नहीं लिया, पहले में एक अवतारिक का लिया, वो उसके उसके साथ पूरे विश्रसोपचय, देखो छह पुंज बनाए थे ना, ये अवतारिक का पुंज है, तेजस का, कारमान का, और ये अवतारिक का एक विश्रसोपचय है, तेजस का विश्रसोपचय और कारमान का विश, ये भी जघन्य है। विश्रसोपचय में भी जघन्य उत्कृष्ट होगी कि नहीं होगी? हाँ, अभी इसमें से एक परमाणु लिया शुरू में, एक परमाणु बढ़ाया, नहीं ऐसा नहीं लिया है, यहाँ अनंत आएगी या नहीं। अभी ये विश्रसोपचय में है, विश्रसोपचय में कितने हैं जीव राशि से अनंत, तो खाली एक परमाणु के है कि सब परमाणु के मिलकर है? विश्रसोपचय सब परमाणुओं के मिलकर है ना, वहां पर अवतारिक के सब परमाणुओं का जो विश्रसोपचय है उसको यहाँ विश्रसोपचय का पुंज कहा है। अभी ये पुंज में एक बड़ा, दो बड़ा, तीन बड़ा, चार बड़ा, इतने बड़े जीव राशि से अनंत गुणे इसमें बढ़ गए, उतने बड़े को एक परमाणु बढ़ाया, अभी यहाँ बढ़ाया नहीं है, जो कुछ टोटल है उतना ही रखा है, बाद में उसमें एक 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 बढ़ाएंगे। ये नया ग्रहण किया ऐसा नहीं लेना, वहां पर कोई अन्य जो उतने ही विश्रसोपचय के सहित आया था और उसके औदारिक परमाणु है परंतु विश्रसोपचय उसका उतना ही था, इस ऐसा लेना है, पॉसिबिलिटी ऐसी लेनी है। उतने भेद होते, हाँ जघन्य औदारिक शरीर के साथ इतने भेद हुए, एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा। अब ऐसा कोई अन्य जीव है कि जघन्य से एक औदारिक परमाणु ज्यादा है उसका, विश्रसोपचय उतना ही है, ऐसा हो सकता है ना? ऐसा जीव लिया, फिर ऐसा और जीव कि जघन्य प्लस वन यहाँ पर है और यहाँ विश्रसोपचय में एक परमाणु अधिक, फिर दो अधिक, फिर तीन अधिक, इस तरह से उसके भी विकल्प अनंत लेना। हाँ, जीवन से अनंत गुणे तक वहां जाएगा। फिर और ऐसा कोई अन्य जीव है कि उसके जघन्य नहीं है, दो परमाणु ज्यादा है और विश्रसोपचय उतना ही है, फिर उसमें विश्रसोपचय में एक अधिक, दो अधिक, तीन अधिक, ऐसा करते जाओ इस तरह। अब ये सब मैक्सिमम बढ़ाया, अब तेजस पर इसी विधि से घटित कर रहे हैं, ये कितने हो जाएंगे सब है, और ये भी क्षपित कर्मांशिक रूप में ले लिए और ये अयोगी के अंतिम समय में ले रहे, फिर अयोगी का एक समय कम करेंगे क्योंकि वो जो एक निश्चय गल चुका है ना। कारमान का समय प्रबुद्ध गया है और तेजस का एक निश्चय गया है और औदारिक का एक निश्चय चला गया, तो फिर उसमें लगाएंगे, ये तो मिनिमम पॉसिबल बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पढ़ेंगे अभी हम, ये क्या कहना चाहते हैं उसकी अपने समझ में आनी चाहिए, एक एक परमाणु के स्थान कैसे हो सकते, होने यानी पॉसिबिलिटी की बात लेना है यहाँ पर। नीचे क्या पैराग्राफ, पुनः अन्य जीव के फिर पढ़ती हूँ मैं, तेजस शरीर के विश्रसोपचय परमाणु पुंज को तीन परमाणु अधिक करके स्थित होने पर अन्य अपनुरुक्त स्थान होता है, इस प्रकार परमाणु अधिक आदि के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय रूप परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर अनंतर जिसने विश्रसोपचय सहित औदारिक शरीर को ओघ उत्कृष्ट किया है, पहले हमने देखा था ना उत्कृष्ट किया था ना उसने, और विसरसोपचय सहित कार्मण शरीर को जघन्य किया है तथा तेजस शरीर को एक परमाणु अधिक करके और उसी के विसरसोपचय पुंज को विसरसोपचय के एक परमाणु से अधिक करके देखो जो क्षपित कर्मांशिक अन्य जीव स्थित है। क्या पहले तो औदारिक का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमने देखे, अब तेजस की देख रहे हैं, कारमान का जगह नहीं रखा है। अब तेजस में एक विश्वसोपचय के पहले बढ़ाया था, अभी उसका एक परमाणु बढ़ा है तेजस का। उसके अनंतर स्थान में स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। पहली लाइन में क्या लिखा था, तेजस शरीर के विसरसोपचय परमाणु पुंज को तीन परमाणु अधिक करके लिया था। अभी नीचे से दूसरी लाइन इसी पैराग्राफ की, कारण का जानकर कथन करना चाहिए, विसरसोपचय वाले ज्यादा लिए ना उसमें। इस प्रकार तेजस शरीर के दो पुंज तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट होने तक बढ़ाने चाहिए। ये उन्होंने यहीं पर छोड़ दिया, औदारिक में तो समझा है ना, इसमें पहले मिनिमम रखे तेजस के, फिर विसरसोपचय एक एक बढ़ाया, फिर विसरसोपचय उतना ही रखा, तेजस का बढ़ाया, फिर विसरसोपचय एक एक से बढ़ाते हुए अनंत बढ़ाए, फिर वो उसका उतना ही रखा, तेजस का और एक बढ़ाया। इस तरह से दोनों ही परमाणु पुंज जो है वो उत्कृष्ट तक बढ़ाए। अब कारमान का नंबर आएगा। शंका, यहाँ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट से क्या तात्पर्य है? लिखा ना तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट, इतना उत्कृष्ट बढ़ाना चाहिए कि वहां औदारिक और कारमान तो उतने ही रहने चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है कि मिनिमम योग के द्वारा जो जीव है अभी वो 14वें तक जो था, अभी तो योग नहीं है, नए ग्रहण का प्रश्न नहीं है, परंतु पहले उत्कृष्ट योग से जिसने ग्रहण किया होगा तो क्या होगा, उसके और परमाणु बढ़ेंगे ना, तीनों एक साथ बढ़ेंगे किसी अन्य जीव के, तो उतने ही योग से जो आया था उसमें ये पॉसिबिलिटी थी। अब जो अधिक योग से आया था उसके पास परमाणु अधिक है, इसलिए वो तत्प्रायोग्य कहा। देखो समाधान, योग वृद्धि के बिना उत्कर्षण और अपकर्षण द्वारा विसरसोपचय सहित जितने परमाणुओं की वृद्धि संभव हो मात्र उतने परमाणु अधिक करना। क्या कहते, योग वृद्धि होगी तो औदारिक वैकृत तेजस सब बढ़ेंगे, तो योग वृद्धि तो नहीं करनी है, तो ये पॉसिबल कैसे है, तो उत्कर्षण अपकर्षण के द्वारा उसमें परमाणु अधिक कम हो सकते, किसी का एक परमाणु अधिक है, किसी के इतने ज्यादा है, किसी के इतने ज्यादा है, इसलिए तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट कहा। यही यहां तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट पद से तात्पर्य है। तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट इसका अर्थ क्या है, योग वृद्धि बिना, क्योंकि योग वृद्धि होती है किसी जीव के तो उसके में वो औदारिक और तेजस और कारमान की संख्या ज्यादा हो जानी चाहिए थी, ऐसा जीव नहीं लिया यहां पर। शंका, योग से परमाणुओं की वृद्धि क्यों नहीं ली गई है? आपको एक दो चार बढ़ाना है तो योग से भी बढ़ा सकते हैं ऐसा कहते हैं। समझ नहीं, क्योंकि योग से परमाणुओं की वृद्धि ग्रहण करने पर तीनों शरीरों की युगपत वृद्धि प्राप्त होती है। ख्याल में आए, क्योंकि योग के अकेले तीनों का अलग अलग तो है नहीं ना, योग एक साथ होते हैं तो योग के कारण तीनों ही शरीरों का वहां बंध होता है। अयोगी में योग होगा कि नहीं होगा? तो ये संयोग अवस्था में जिसने या पूर्व अवस्था में जितने ग्रहण किए थे और बाद में जो है उसकी बात चल रही है यहाँ पर, अलग अलग जीवों की किसमें ज्यादा हो सकते उसकी बात है ना ये। पुनः क्षपित कर्मांशिक अन्य एक जीव लीजिए, ये पॉसिबिलिटी और बढ़ा रहे हैं, जो विसरसोपचय सहित औदारिक और तेजस शरीर को तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट करके, अब ये जो छह पुंज में से चार पुंज उसने उत्कृष्ट कर दिए, ऐसा कोई अन्य जीव है, और अभी कारमण पर घटित कराएंगे। कारमण शरीर के विसरसोपचय में सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक एक एक परमाणु बढ़ाता है। अभी वो डायरेक्ट बता दिया, कारमान का जो पुंज है और कारमान का विश्रसोपचय जो है, तो पहले में पहले एक एक परमाणु बढ़ते हुए विश्रसोपचय में लिए अनंत तक बढ़ाए, तब पहले के समान क्षपित कर्मांशिक इस अन्य जीव के अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कारमान तो जगन्य रहा और विश्रसोपचय मैक्सिमम तक बढ़ा। पुनः अन्य एक क्षपित कर्मांशिक जीव लीजिए, जिसने अपने विश्रसोपचय सहित औदारिक और तेजस शरीर को तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट किया है, तथा जो कारमान शरीर के प्रति क्षपित कर्मांशिक है, उसके कारमान शरीर के विश्रसोपचय जघन्य पुंज में दो परमाणु अधिक करके अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित होने पर उस समय अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं की वृद्धि होने तक कार्मण शरीर के विश्रसोपचय को एक एक परमाणु द्वारा बढ़ाना चाहिए। जघन्य कार्मण शरीर को तो जघन्य रखा और उसके विश्रसोपचय एक एक से बढ़ाए। अंत की दूसरी लाइन, पुनः क्षपित कर्मांशिक एक अन्य जीव लीजिए। 70 पेज, जो अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में कारमान शरीर को एक परमाणु अधिक करके कारमान शरीर के कर को नहीं उसको एक शरीर अधिक करके बराबर तथा कारमान शरीर के विश्रसोपचय पुंज को सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं के द्वारा बढ़ाकर स्थित है, उसके सब पिछले स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। पुनः पूर्वोक्त क्षपक को छोड़कर एक क्षपक अयोगी वाले को यहां क्षपक कहा है। सांप्रतिक क्षपक के कारमान शरीर के विश्रसोपचय पुंज में एक परमाणु की वृद्धि करने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार कारमान शरीर के विश्रसोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे परमाणु पुद्गलों के बढ़ाने पर उस समय पहले के समान क्षपित कर्मांशिक जो अन्य जीव अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में कारमण शरीर को पहले के समान एक परमाणु अधिक करके स्थित है, उसके तब अनंतर पिछले स्थान से सब चाहिए हा? उसके तब यानी उस समय अनंतर पिछले स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। यही विधि है हमने जो औदारिक से तेजस से कारमान तक देखी है। पहले विश्रसोपचय में एक एक बढ़ाते जाना, तब कारमान शरीर में एक बढ़ाना, विश्रसोपचय उतना रखा, फिर वो बढ़ाए हुए कारमान के साथ विश्रसोपचय फिर अनंत बढ़ाना, एक एक से बढ़ाना, फिर तीसरा कारमान बढ़ाना, एक कारमान शरीर में बढ़ाते हैं एक एक बढ़ाना, वो एक एक बढ़ाने के बाद विश्रसोपचय में अनंत तक बढ़ाना, फिर बाद में कारमण में और एक बढ़ाना, विश्रसोपचय उतना ही रखते हुए। अन्य अन्य जीवों की बात है, वही जीव एक परमाणु ग्रहण करता है ऐसी बात नहीं है। जो हमें लगा ना विश्रसोपचय बढ़ने चाहिए, इस प्रकार योग के बिना क्या कहा है, योग अगर बढ़ता हुआ योग अगर लेते तो क्या होता, एक साथ औदारिक वैक्रिय सॉरी औदारिक तेजस और कारमान तीनों का बढ़ जाता, उसमें सब बढ़ते ना, परमाणु बढ़ते विश्रसोपचय भी बढ़ते, तो अकेले अपकर्षण उत्कर्षण द्वारा ही जो वृद्धि होती है उससे उत्कृष्ट वृद्धि के होने तक वृद्धि करनी चाहिए। ये छह पुंज में किस किस तरह से वृद्धि होती हमने देखे थे, और ये अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा ही इतनी सारी जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। अब ये मिनिमम पॉसिबल योग के जीव लिया, अभी अधिक योग वाला ले सकते हैं, नीचे के समयों में ले सकते हैं। पुनः इन छह द्रव्यों के साथ, छह द्रव्य कौन से हैं, हाँ पुंज जो हमने छह बनाए हैं, हाँ योग के द्वारा, पहले योग के बिना लिया था अभियोग के द्वारा। एक बार 6 द्रव्यों के बढ़ाए हुए द्रव्य के बराबर वृद्धि करके स्थित हुआ जीव समान है। कोई अन्य ऐसा जीव, अभी कौन से जीव लिए? अनंत विकल्प कैसे किए हमने? क्रम से एक एक परमाणु को बढ़ाते हुए लिए, क्रम से बढ़ाते हुए सब में मैक्सिमम हो गए, उसी योग के द्वारा सब में मैक्सिमम हुए, बराबर। कोई अन्य ऐसा जीव हो सकता है कि पहले उसके योग के द्वारा इतने ही होते परमाणु, ये अन्य कोई जीव अधिक योग के साथ, ये तो जगन्य योग के साथ आया हुआ था और उसने एक एक बढ़ाते हुए, अन्य अन्य ही जीव है इसमें, मैक्सिमम पॉसिबल उसमें देखा हमने, जगन्य योग के साथ उत्कृष्ट पॉसिबिलिटी देखी। कोई अन्य ऐसा जीव हो सकता है कि उसका योग थोड़ा ज़्यादा है और उसमें भी ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखो, पुनः इन 6 द्रव्यों के साथ योग के द्वारा एक बार 6 द्रव्यों में बढ़ाए हुए द्रव्य के बराबर वृद्धि करके स्थित हुआ जीव समान है। ये तो अपकर्षण और उत्कर्षण द्वारा इतने एक 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 बढ़ाने वाले जीव लिए। यहाँ जो जघन्य देखा था ना, जघन्य में बिना योग के वृद्धि हुए कितनी बढ़ सकती है, तो अनंत विकल्प देखे हमने, बढ़ाने पर अनंत हुए हैं। पहले तो हमने एक जीव ऐसा लिया था कि उसके 6 पुंज मिनिमम थे और बढ़ाते बढ़ाते 6 उत्कृष्ट हो गए, तो 6 जो उत्कृष्ट हुए तो एक एक परमाणु से बढ़ते हुए अन्य अन्य विकल्प देखे, वो उत्कर्षण और अपकर्षण द्वारा जो कुछ में उसमें बढ़ोतरी हुई थी। कोई अन्य जीव पहले से उसका योग थोड़ा ज़्यादा था और उसके साथ उसमें ये पोजिशन थी 6 पुंजों में, ऐसा अन्य जो हो सकता है ना कि उत्कर्षण के बिना एक डायरेक्ट योग से उन्हें 6 में वृद्धि हो गई थी, उसकी एक साथ 6 में वृद्धि हुई और ये उसी के समान है। योग पहले था, अयोगी में तो योग है ही नहीं है, परंतु पहले वो उसी योग के साथ आते आते अभी लास्ट समय तक आया है, यानी पहले उसने इतने ग्रहण किए थे कि अभी उन दोनों की पोजीशन समान है संख्या में। अयोगी के ही अंत समय में, परंतु शुरू में अधिक योग के कारण उसके पास अधिक परमाणु थे। ये सारे ही भिन्न ही जीव है, अनंत की जो हमें पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सभी भिन्न ही जीव है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है उसकी भी, जो पहले ज्यादा योग से उसने ग्रहण करके आया हुआ कोई अन्य जीव, उसके ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, उसके लिए ये मिनिमम है, अभी उसमें उत्कर्षण के द्वारा और इतने अनंत विकल्प बताएंगे। हाँ, यहाँ देखो, अयोगी का अंतिम समय ही चल रहा है। तो पहला जो किया था हमने, क्षपित कर्मांशिक से आया हुआ क्षपित कर्मांशिक जीव में भी वो कोई उसमें भी विकल्प होगी ना। क्षपित कर्मांशिक मिनिमम पॉसिबल कर्मों के साथ आया था, अब उस क्षपित कर्मांशिक में ही एक थोड़ा ज़्यादा योग वाला जीव होगा, उसके पास थोड़े अधिक होंगे परमाणु, कितने हो गए ये उसकी मिनिमम है। यहाँ जो मैक्सिमम है वो उसकी मिनिमम होगी, तो अधिक योग अधिक योग अधिक योग, ऐसे योगों में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। अयोगी में योग नहीं, परंतु पूर्व अवस्था में, जैसे क्षपित कर्मांशिक वो पूर्व में क्षपित करके आया है, वैसे हाँ ज्यादा वाला पूर्व अवस्था में अधिक योग था उसका, अयोगी में तो योग है ही नहीं है। पूर्व अवस्था में थोड़े अधिक योग से उसने ग्रहण किए थे, ऐसा जीव लेना है। ये 6 जो उत्कृष्ट है वो क्षपित कर्मांशिक के लिए जघन्य से लेकर एक एक बढ़ाते हुए उत्कृष्ट आया है। ऐसा जो उत्कृष्ट किसी अन्य जीव को अयोगी के अंतिम समय में, परंतु योग के कारण बढ़े थे उसके। इसके क्यों बढ़े हैं या क्यों अभी इतने अनंत विकल्प उत्कर्षण वगैरह के द्वारा? देखो इसको पढ़ेंगे। समुद्घात में समानता होती है वो स्थिति की अपेक्षा होती है। अब यहाँ परमाणुओं की संख्या की बात चल रही है। स्थिति समान हो गई, मान लेते पहले ज्यादा स्थिति थी, कम स्थिति हो गई, तो उतने ही परमाणु कम स्थिति में बढ़ गए। परमाणु की संख्या वहां चेंज नहीं हुई है। हाँ, और ये अंतिम समय की बात चल रही है। देखो ये पैरेग्राफ में फिर पढ़ते हैं, नीचे का दूसरा पैरेग्राफ। पुनः इन छह द्रव्यों के साथ, अभी जो छह पुंज देखे उसके साथ, योग के द्वारा एक बार छह द्रव्यों में बढ़ाए हुए द्रव्य के बराबर वृद्धि करके स्थित हुआ जीव समान है। उसने एक ही फटके में, योग थोड़ा ज्यादा है तो उसके ये पहले हुई वृद्धि इतनी हो चुकी थी। किसी जीव के अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा इसमें पॉसिबिलिटी थे, अन्य अन्य जीवों में, ये सारे अन्य अन्य विकल्प है, पॉसिबिलिटीज बता रहे किसी जीव में। इस प्रकार अयोगी गुण स्थान के न करना, उसका अंतिम समय के गुणस्थान तो हुआ है, उसका गुणस्थान करो। हाँ, अंतिम समय के द्रव्य के सर्वोत्कृष्ट होने तक कितनी बार करना चाहिए? असंख्यात बार वृद्धि करनी चाहिए। हाँ, योग में तो असंख्यात बार ही होती ना, उसके असंख्यात स्थान, योगों के तो असंख्यात स्थान है, तो उसमें असंख्यात बार वृद्धि होगी। यथा अंतिम विकल्प को बतलाते हैं। अभी अयोगी में उत्कृष्ट द्रव्य किसके होगा, ये तो हमने पहले क्षपित कर्मांशिक रूप से आया हुआ देखा है। हाँ, तो अभी गुणित कर्मांशिक जीव लिया कि ऑलरेडी जिसके पास ज्यादा था, बीच वाले विकल्प योग थोड़ा ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके किसके पास पहले से ही ज्यादा परमाणु थे, मैक्सिमम उत्कृष्ट तक किसको होगा? अभी गुणित कर्मांशिक से जो आया है, तो कोई एक गुणित कर्मांशिक जीव सातवीं पृथ्वी में तेजस और कारमान शरीर को उत्कृष्ट करके पुनः मरकर दो तीन भौतिक तीर्यंचों में उत्पन्न होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। गुणित कर्मांशिक की हमने बहुत विस्तार से देखी थी बात, पहले कहाँ कहाँ घूमते कैसे, तो सातवें नरक का नार के अंतिम समय में उसका कर्म का उत्कृष्ट है, वहां हमने कर्म की अपेक्षा देखी थी, तेजस भी उसका उत्कृष्ट है। पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, पुनः गर्भ से लेकर अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष का होने के बाद संयोगी जिन होकर कुछ कम पूर्व कोटि काल तक संयम गुण श्रेणी निर्जरा करके अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित हुआ। उसके प्रत्येक शरीर की वर्गणा पूर्वोक्त प्रत्येक शरीर की वर्गणा के समान होती है। अब यहां पर वृद्धि नहीं है क्योंकि इसने सर्वोत्कृष्ट पने को प्राप्त कर लिया है। ये बीच वाले जो अन्य अन्य विकल्प बतलाए हैं, योग बढ़ाने से सभी में जो वृद्धि मैक्सिमम पॉसिबल किसके होंगे, तो ये गुणित कर्मांशिक रूप से आए हुए जीव के होंगे। अब ये तो अयोगी के चरम समय में हो गया। अब अयोगी के द्विचरम समय का आश्रय करके कथन करते हैं। द्विचरम में क्या पॉसिबल, क्या ज्यादा होगा? हाँ, ये जो खिर गए थे उसके परमाणु, तीनों शरीरों के परमाणु, वो ज्यादा हो गए ना, इसमें द्विचरम में ज्यादा हो गए, तो नया ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? अयोगी है ना, वहां नया ग्रहण नहीं है। यथा जिस गुणित कर्मांशिक जीव ने सातवीं पृथ्वी में तेजस शरीर और कारमान शरीर की वर्गणा को उत्कृष्ट किया है, और जो द्विचरम गुण श्रेणी द्रव्य से तथा कारमान तेजस और औदारिक शरीर की द्विचरम गोपुच्छा से न्यून उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा को करके अयोगी के द्विचरम समय में स्थित है, उसके अंतिम समय की वर्गणा के साथ द्विचरम समय की वर्गणा समान होती है। अभी पहले हमने अंतिम समय में गुणित कर्मावश्यक रूप से आया हुआ जीव देखा था। अन्य कोई ऐसा जीव होगा कि उसके द्विचरम में भी उतना द्रव्य है? हाँ। पुनः अयोगी के अंतिम समय की वर्गणा को छोड़कर अयोगी के द्विचरम समय की क्षपक प्रत्येक शरीर वर्गणा अपने उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा के प्रमाण को प्राप्त होने तक पूर्वोक्त विधि से बढ़ानी चाहिए। इस प्रकार त्रिचरम चतुष्चरम आदि समयों में औदारिक तेजस और कार्मन शरीर तथा उनके पृथक पृथक विश्रसोपचय परमाणु बढ़ाकर उतारते हुए, नीचे नीचे परमाणु ज्यादा है ना, तो भी वो बढ़ाते बढ़ाते उतारते हुए संयोगी गुणस्थान के प्रथम समय तक ले जाना चाहिए। उल्टा जा रहे हैं हम तो समय संयोगी के पहले समय में और ज्यादा होगा ना परमाणु, इससे पीछे उतार कर ले जाना संभव नहीं है। संयोगी तक ही क्यों लिया? हाँ देखो, क्योंकि क्या लिखा यहाँ, क्षीण कषाय के अंतिम समय में बादर निगोद वर्गणा उपलब्ध होती है। उस जीव को बादर निगोद वर्गणा, वहां की जो वर्गणा है उसको बादर निगोद वर्गणा कहेंगे, क्योंकि बारहवें गुणस्थान में बादर निगोद युक्त शरीर है। इसलिए वहां भी जो जीव लिया था ना पूर्व कोटि वाला, आठवें समय में उसको संयोगी किया था, क्योंकि वो प्रत्येक शरीर वर्गणा को ही हमको लेना था। इसलिए आप पहली बात हुई थी ना, प्रत्येक शरीर वर्गणा किसको कहना, हाँ जिसमें बादर निगोद नहीं है, ऐसे जीव ऐसा शरीर लिया है। इसलिए सातवीं पृथ्वी के अंतिम समयवर्ती नारकी के द्रव्य का आश्रय करके वृद्धि का कथन करते हैं। हमने पीछे पीछे जाते जाते कहाँ तक ले गए हम, वो गुणित कर्मांशिक रूप से आया हुआ अयोगी के पीछे पीछे एक एक समय जाते जाते थे, संयोगी के पहले समय तक आ गए। अभी उससे ज्यादा द्रव्य किसको होगा, नारकी के अंतिम समय में। प्रत्येक शरीर वर्गणा चाहिए ना, नारकी में कुछ का, इसलिए अयोगी में घटित किया, संयोगी में घटित किया। अब उनसे ज्यादा किस में है, नारकी में है, नारकी के अंतिम समय में। वहां वैक्रिय तेजस कारमान सबको लेंगे। देखो, यथा गुणित कर्मांशिक विधि से आकर सातवीं पृथ्वी में अंतिम समय में विद्यमान नारकी के तेजस शरीर और कारमान शरीर के चार पुंजों की अपेक्षा प्रथम समयवर्ती संयोगी जिनके तेजस शरीर और कारमान शरीर के चार पुंज विशेषहीन होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो नारकी के अंतिम समय में हमने देखा था। उत्कृष्ट कहाँ होता है, तो नारकी के अंतिम समय में। चार जो पुंज है ना, यहाँ इनका वैक्रियक उनका औदारिक दोनों को ही छोड़ दिया है, चार पुंजों में किसका ज्यादा है, नारकी का ज्यादा है। तो ये संयोगी जिनके तो विशेषहीन है, प्रथम समयवर्ती संयोगी जिनके औदारिक शरीर परमाणु पुद्गल पुंज से नारकी के अंतिम समय में वैक्रिक परमाणु पुद्गल पुंज असंख्यात गुना होता है, क्योंकि हमको यहाँ बढ़ाना है ना, वो विशेषहीन था। देखो छह पुंज थे, हम कंपेयर कर रहे हैं संयोगी का पहला समय और वहां नारकी का अंतिम समय, सातवें नरक के नारकी का अंतिम समय। तो इसमें ये संयोगी में तो ये औदारिक है और नारकी में ये वैक्रिक है। तो नारकी के जो चार पुंज है उससे संयोगी के जो ये चार पुंज है वो विशेषहीन है, और नारकी को यहाँ जो वैक्रिक पुंज है और वहां संयोगी का औदारिक पुंज है, वो औदारिक पुंज से इनका वैक्रिक पुंज असंख्यात गुणा है और ये विशेषहीन है। उसका अर्थ अभी यहाँ अभी हमको नारकी में आने ना, हम बढ़ते हुए हम पुंज देख रहे हैं, गुणकार क्या है? तो जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, बाह्य वर्गणा अनुयोग द्वार में 5 शरीरों के कहे गए प्रदेश अल्प बहुत्व सूत्र से, यह प्रदेश अल्प बहुत्व सूत्र जाना जाता है। यथा औदारिक शरीर के प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। कल आपको जो याद आया था ना, औदारिक से वो आगे आगे वाले और फिर बाद में अनंत गुणा और पहले असंख्यात गुणा, इनसे वैक्रियक शरीर के प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है। इनसे आहारक शरीर के प्रदेशाग्र असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है। अब असंख्यात गुणा नहीं कहा, अनंत गुणा। इनसे तेजस शरीर के प्रदेशाग्र अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग गुणकार है। इनसे कारमान शरीर के प्रदेशाग्र अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग गुणकार है। इसलिए अभी जो बात देखी थी हमने, वहां सहयोगी के पहले समय में और यहाँ नारकी के अंत्य समय में, ये उनके असंख्यात गुणा बताया, प्रदेशाग्र परमाणु की संख्या। शंका, ये गुणकार किस प्रमाण से सिद्ध है? उसका समाधान, अविरुद्ध आचार्यों के वचन से सिद्ध है। तत्वार सूत्र में भी सूत्र है ऐसा, पहले 3 में वो तो असंख्यात गुणा का है और आगे के लास्ट 2 है वो अनंत गुणा वाले हैं। प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके औदारिक शरीर के विसरसोप से पुंज से अंतिम समयवर्ती नारकी के वैक्रियक शरीर का विसरसोप से पुंज असंख्यात गुणा है। यानी वो तो हमने पहले औदारिक से वैक्रियक असंख्यात गुणा वो देखे और विसरसोप से पुंज भी असंख्यात गुणा है। तेजस कार्मण का कमी है, कम है, क्योंकि उसके में तो मैक्सिमम तो 7वें नर के नारकी को ही होता है, इसलिए वहां विशेषहीन। तो यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, बाह्य वर्गणा अनुयोग द्वार में 5 शरीरों के विसरसोपचय के कहे गए अल्पभूत्व। पहला हम अल्पभूत्व देखा था, वो तो शरीरों के प्रदेशाग्र का अल्पभूत्व देखा था। अब 5 शरीरों के जो विसरसोपचय है उनका अल्पभूत्व भी वहां बताया है, उससे जाना जाता है। यथा जघन्य औदारिक शरीर का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय सबसे स्तोक है। उसी जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसरसोपचय अनंत गुणा है। अभी औदारिक शरीर में भी जघन्य उत्कृष्ट लिए, उसके पद भी जघन्य उत्कृष्ट और उसका विसरसोपचय भी जघन्य उत्कृष्ट। अब उसी के उत्कृष्ट का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय अनंत गुणा है। उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसरसोपचय अनंत गुणा है। फिर वैक्रियक शरीर में वैक्रियक शरीर के जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय अनंत गुणा है। फिर वैक्रियक शरीर के उसी के जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसरसोपचय अनंत गुणा है। फिर उसी के उत्कृष्ट का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय अनंत गुणा है और उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसरसोपचय अनंत गुणा है। पर एक में 8 हो गए, 8 हो गए, प्रत्येक में 4-4 लगाए। देखो, उसके जघन्य का जघन्य पद और जघन्य का उत्कृष्ट पद, फिर उत्कृष्ट का जघन्य पद, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद। फिर फिर आहारक शरीर के जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विश्रसोप से अनंत गुणा है, और उसी के जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्रसोप से अनंत गुणा है। अब उसी के उत्कृष्ट का जघन्य पद में जघन्य विश्रसोप से अनंत गुणा है, ये अनंत अनंत गुणा में है। देखो ऊपर भी हमने अनंत गुणा ही देखा था, और उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्रसोप से अनंत गुणा है। ये आहार के हो गए चार। अब तेजस के, तेजस शरीर के जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विश्रसोप चय करो, जय हुआ, अनंत गुणा है। उसी के जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्रसोप चय अनंत गुणा है। उसी के उत्कृष्ट का उपट दिख रहा है, स्ट करना, जघन्य पद में जघन्य विश्रसोप से अनंत गुणा है, और उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्रसोप से अनंत गुणा है। कारमान शरीर पर, कारमान शरीर के जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विश्रसोप से अनंत गुणा है, उसी के जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्रसोप से अनंत गुणा है, फिर उसी के उत्कृष्ट का जघन्य पद में जघन्य विश्रसोप से अनंत गुणा है, और उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्रसोप से अनंत गुणा है। ये 20 हो गए, पांच शरीर के हर एक के चार चार घटित किए। गुणकार सर्वत्र सब जीवों से अनंत गुणा है। यह अल्प बहुत्व जो जीवों से रहित होते हैं उनका होता है। ये जीवों से बराबर करना, जीर्वो हो गया, जीवों से। मुख्य जीवाणम व जीव सही है न जीव सहीणम एदम अप्पा बहुगम मुक्त जीवाणम, मुक्त जीवों के जीवों से रहित होते हैं उनका होता है। एदम अप्पा बहुगम मुक्त जीवाणम न जीव सहीणम। यह अल्पभूतव जो जीवों से रहित होते हैं उनका होता है, जो जीवों से युक्त होते हैं उनका नहीं होता। अन्यथा विश्रसोपचय प्रधान उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा से विश्रसोपचय प्रधान जघन्य बादर निगोद वर्गणा के अनंत गुणे हीन होने का प्रसंग आता है। हाँ, जीवन से यानी जो ये शरीर जो है, पांच शरीर हैं, कोई विश्रसोपचय जो है अन्य जीवन से रहित होता है, निगोद की बात है क्या? अन्यथा क्या होगा? विश्रसोपचय प्रधान उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा से विश्रसोपचय प्रधान जघन्य बादर निगोद वर्गणा के अनंत गुणे हीन होने का प्रसंग आता है। आगे आगे पढ़ेंगे तो ख्याल है, जो जीवन से युक्त होते हैं उनका अल्प बहुत्व आगे कहते हैं। ये जो हमने देखा था जीवन से रहित वाले की बात है, जो जीवन से युक्त है उसकी बात अब कर रहे हैं। यहां भी अल्प बहुत्व बता रहे हैं। अभी क्या बताना चाहते हैं ख्याल नहीं आया मेरे बराबर। देखो तो जीवन से युक्त क्यों कहा, निगोद क्यों नहीं कहा? त्रस किसा? हाँ, जिन शरीरों में अन्य जीव नहीं है ऐसा लिया, प्रत्येक शरीर का ही लिया। जब हम ये जीवन से युक्त वाला पढ़ेंगे ना तो ख्याल रहेगा है क्या टाइम। हाँ इसका अल्पभूतव देखते देखो जो जीवन से युक्त है उनका अल्पभूतव आगे कहते हैं औदारिक शरीर का जघन्य विश्रसोपचय सबसे स्तोक है उसी का उत्कृष्ट विश्रसोपचय असंख्यात गुणा है। आगे हमने अनंत गुणा वाला देखा था गुणकार क्या है पल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। वैक्रेक शरीर के संपूर्ण प्रदेश पिंड में सबसे जघन्य विश्रसोपचय असंख्यात गुणा है गुणकार क्या है जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है उसी का उत्कृष्ट विश्रसोपचय असंख्यात गुणा है। अब जीवन से युक्त में अगर आप निगोद को लेते हैं तो वैकिरिक शरीर को कैसे लेंगे गुणकार क्या है पल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। फिर पांचवा पॉइंट पांचवा ना आहारक शरीर के संपूर्ण प्रदेश पिंड में सबसे जघन्य विश्रसोपचय असंख्यात गुणा है गुणकार क्या है जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है। छठे उसी का उत्कृष्ट विश्रसोपचय असंख्यात गुणा है गुणकार क्या है पल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। फिर तेजस शरीर का तेजस शरीर के संपूर्ण प्रदेश पिंड में सबसे जघन्य विश्रसोपचय अनंत गुणा है अब अनंत पर आ गए हैं गुणकार क्या है अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग गुणकार है उसी का उत्कृष्ट विश्रसोपचय असंख्यात गुणा है गुणकार क्या है पल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। जघन्य से उत्कृष्ट लिया आहारक से इसका तेजस का अनंत गुणा लिया परंतु तेजस के जघन्य से तेजस का उत्कृष्ट लिया वो असंख्यात गुणा है लिखा ना उसी का उत्कृष्ट। कारमान शरीर के प्रदेश पिंड में जघन्य विश्रसोपचय अनंत गुणा है अब तेजस से कारमान का जो है वो अनंत गुणा में चला गया गुणकार क्या है तेजस शरीर गुणकार है तेजस शरीर को यहाँ गुणकार रूप में लिया तेजस शरीर हाँ उसकी संख्या नहीं तेज ये गुणकार हो ये तेजस शरीर में जो गुणकार है ना ऊपर का वही होगा अभव्यों से अनंत वाला उसी का उत्कृष्ट विश्रसोपचय असंख्यात गुणा है गुणकार क्या है पल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। इस कारण से प्रथम समयवर्ती संयोगी जिनके औदारिक आदि छह पुंज द्रव्य के साथ वैक्रियक आदि छह पुंज का द्रव्य समान है ये सारा अल्पभूतव क्यों कथन किया हाँ उनके छह पुंज और इनके छह पुंज समान है कहने के लिए तेजस शरीर गुणकार है ना उसमें तेजस शरीर में जो अनंत वाला गुणकार बताया था अभव्यों का वही यहाँ पर लेना। हम कहाँ देख रहे थे अयोगी तक आए थे पहले समय तक उससे ज्यादा कहाँ है या उसके समान कहाँ है तो ये नारकी के अंतिम समय में लिया था क्योंकि हमको ये स्थान देखने हैं एक एक प्रदेश ज्यादा वाले एक एक परमाणु ज्यादा वाले सातवीं पृथ्वी के अंतिम समयवर्ती नारकी को ग्रहण करके पुनः अपना अपना कम किया गया द्रव्य यहाँ के छह पुंजों में पृथक पृथक बढ़ाना चाहिए। निगोद अगर लेंगे वो तो बाद में लिया उसकी ने अल्प बहुत्व में जो निगोद की अल्प बहुत्व में यहाँ वैकिरिक को भी लिया तो वैकिरिक साथ आहार के साथ वो निगोद कैसा घटित होगा यानी कोई भी जीव नहीं, ऐसा जीव ले, ऐसा लेना है शरीर, जीवन से रहित शरीर लेने क्या लेना, ये मेरे भी ख्याल में नहीं आया। क्योंकि अगर निगोद से रहित लेते हैं तो वैकृत आहार को क्यों लिया है बीच में? यहाँ पढ़ते हैं अभी एक एक परमाणु बढ़ा है ना, अभी बढ़ाना है, अब नरक में आ गए ना वापस उल्टा। अब अन्य जीव के द्वारा वैकृत शरीर के विसृतोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक करने पर सहयोगी जिनके प्रथम समय के उत्कृष्ट द्रव्य के ऊपर एक परमाणु अधिक होकर अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। हमने ऐसा जीव देखा था सातवीं नरक पृथ्वी में, वो केवली के पहले समय जैसा उतना उसका द्रव्य था। अब ऐसा कोई जीव लेना है कि उसमें विसृतोपचय में एक ज्यादा है, तो उससे एक स्थान आगे चला गया ना, एक परमाणु से अधिक बढ़ गया। इस प्रकार एक एक परमाणु अधिक के क्रम से वैकृत शरीर के विसृतोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे विसृतोपचय परमाणु होने तक बढ़ाने चाहिए। अनंतर वैकृत शरीर को एक परमाणु अधिक करके, अभी विसृतोपचय के सभी विकल्प लिए, अभी वैकृत शरीर में एक परमाणु बढ़ाना, विसृतोपचय तो उतना ही रखना, तथा उसी के विसृतोपचय पुंज को सब जीवों से अनंत गुणे विसृतोपचय परमाणुओं से अधिक करके स्थित हुए अन्य जीव के उस समय पहले उत्पन्न हुए स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। एक एक परमाणु से अधिक वाला स्थान देखना है, कारण सुगम है। इस प्रकार उक्त विधि से अपने उत्कृष्ट द्रव्य के प्रमाण को प्राप्त होने तक वैकृत शरीर के दो पुंज बढ़ाने चाहिए। छह पुंज में से भी वैकृत शरीर के परमाणु पुंज बढ़ा के दिखाए। अनंतर अपने विसृतोपचय के साथ वैकृत शरीर के द्रव्य को उत्कृष्ट करके पुनः तेजस शरीर के विसृतोपचय पुंज को एक परमाणु अधिक करके स्थित हुए एक अन्य जीव के उस समय अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार तेजस शरीर के विसृतोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे विसृतोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक एक एक परमाणु की उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाना चाहिए। तेजस की अभी बात चल रही है, उसका परमाणु पुंज उतना ही रखा और विसृतोपचय में एक एक बढ़ाया। अनंतर पूर्व में विवक्षित हुए तेजस शरीर को एक परमाणु अधिक करके तथा उसी के विसृतोपचय पुंज को सब जीवों से अनंत गुणे विसृतोपचय परमाणुओं से अधिक करके स्थित हुए जीव के प्राप्त हुआ यह स्थान अनंतर पिछले स्थान से एक परमाणु अधिक होता है। इस प्रकार तेजस शरीर के दो पुंजों में तब तक वृद्धि करते जाना चाहिए जब तक कि ये उत्कृष्टपने को प्राप्त नहीं हो जाते। यानी अभी चार पुंज तो उन्होंने मैक्सिमम तक वे ले गए। पुनः एक ऐसा नारकी लो जो वैकृत शरीर और तेजस शरीर को उत्कृष्ट करके पुनः कार्मन शरीर के विसृतोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक करके स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक एक परमाणु की तब तक वृद्धि करते जाना चाहिए जब तक कार्मन शरीर के विसृतोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे विसृतोपचय परमाणुओं की वृद्धि नहीं हो जाती। अनंतर ऐसा अन्य एक जीव लो जो पूर्व निरुद्ध कार्मन शरीर में एक परमाणु अधिक करके पुनः उसी के विसृतोपचय पुंज को सब जीवों से अनंत गुणे विसृतोपचय परमाणुओं से अधिक करके स्थित है, तब यह स्थान अनंतर पिछले स्थान से एक परमाणु अधिक होता है। पुनः इस विधि से गुणित कर्मांशिक नारकी जीव के अंतिम समय में सर्वोत्कृष्ट द्रव्य के प्राप्त होने तक कार्मन शरीर के दोनों पुंजों को उत्कृष्ट करना चाहिए। अब शंका समाधान कल देखें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका